वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय पुरंदरदास श्रीमद् भगवद् गीता थारू अध्याय 11 विराट रूप श्लोक संख्या 52 बोलिए। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शम इदं रूपम् दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शम इदं रूपम् दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। यहाँ धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए। श्लोक फिर से समझेंगे। भगवान कह रहे हैं सुदूरदर्शन इदम रूपम दृष्टवानसि मम। सु का मतलब बहुत ज्यादा और दूर का मतलब कठिन। दर्शन का मतलब दर्शन होना। सुदूरदर्शन का मतलब है जिसका दर्शन होना बहुत ज्यादा कठिन है। इदम रूपम मेरे इस रूप का दर्शन होना बहुत कठिन है। दृष्टवानसि मम और जो तुमने देखा है। देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः, तो देवता भी इस रूप को हमेशा दर्शन करना चाहते हैं। तब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की इस अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाना बंद किया और अर्जुन को बताया कि अनेक तप यज्ञ आदि करने पर भी इस रूप को देख पाना असंभव है। हाँ, कौन सा रूप? विराट रूप। हाँ, विश्व रूप। 48 श्लोक में भगवान ने कहा है नवेद यज्ञ ध्यान निर्मित क्रिया भिन्न तपो विरुग्रह कि किसी प्रकार से भी नहीं देखा जा सकता है। भगवान ने कहा है एवं रूप सत्य हम लोग दृष्टुम तुदन्य कुरु प्रवीर। तो विराट रूप भी भगवान का देखना बड़ा मुश्किल है, है ना। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस श्लोक में कृष्ण रूप की चर्चा कर रहे हैं। कृष्ण रूप की चर्चा कर रहे हैं भगवान कि कृष्ण रूप सुदूरदर्शन है, है ना। तो प्रभुपाद यहां पर यह समझा रहे हैं कि अंतर है, जो कृष्ण का रूप है वो और ज्यादा दर्शन करना कठिन है। किस रूप का दर्शन करना और ज्यादा कठिन है। तो प्रभु लिखते हैं अब सुदूरदर्शन शब्द का प्रयोग किया जा रहा है जो सूचित करता है कि कृष्ण का दिव्य रूप और अधिक गोई है। तो प्रभु जी क्या करें कि दूरदर्श तो वो है विराट रूप दूरदर्शन। आप लोग क्यों बातें कर रहे हैं? आपको बार बार समझा रहे हैं कि बातें ना करिए, फिर बातें कर रहे हैं आप लोग। तो दूरदर्शन और सुदूरदर्शन ये दो शब्द हैं। तो 48वें श्लोक में भगवान ने विश्व रूप को कहा है दूरदर्शन, और इस श्लोक में कृष्ण रूप के बारे में कहा है सुदूरदर्शन, जो सूचित करता है कि कृष्ण का दिव्य रूप और अधिक गुह्य है। कोई तपस्या, वेदाध्ययन तथा दार्शनिक चिंतन आदि विभिन्न क्रियाओं के साथ थोड़ा सा भक्ति तत्व मिलाकर कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन संभवतः कर सकता है, लेकिन भक्ति तत्व के बिना यह संभव नहीं है। इसका वर्णन पहले ही किया जा चुका है। फिर भी विश्व रूप से आगे कृष्ण का द्विज रूप है, जिसे ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी देख पाना और भी कठिन है। वे उनका दर्शन करना चाहते हैं, और श्रीमद् भागवत में प्रमाण है कि जब भगवान अपनी माता देवकी के गर्भ में थे तो स्वर्ग के सारे देवता कृष्ण के चमत्कार को देखने के लिए आए। कृष्ण का चमत्कार मतलब कृष्ण के रूप का चमत्कार, कृष्ण के चमत्कार को देखने के लिए आए, और उन्होंने उत्तम स्तुतियां की यद्यपि उस समय भी दृष्टिगोचर नहीं थे। मतलब कृष्ण दृष्टिगोचर नहीं थे और वे उनका दर्शन करना चाहते थे। इसका मतलब कृष्ण वहीं पर थे लेकिन दृष्टिगोचर नहीं थे। हाँ, तो ये कैसे संभव है कि कृष्ण वहीं पर थे और कृष्ण दृष्टिगोचर नहीं थे, देवता लोग उनका दर्शन करना चाहते थे? कौन सा स्थान? कौन से स्थान की चर्चा कर रहे हैं प्रभुपाद? कंस का कारागार। आप लोग ध्यान से समझ रहे हैं कि नहीं? कंस के कारागार में और दृष्टिगोचर नहीं थे, कृष्ण वहीं पर थे लेकिन दिखाई नहीं दे रहे थे। क्यों? गर्भ में थे माता के, है ना? तो उन्होंने उत्तम स्तुतियां की, वे उनके दर्शन की प्रतीक्षा करते रहे। मतलब जब जन्म लेंगे भगवान तो हमें दर्शन होगा। मूर्ख व्यक्ति उन्हें सामान्य जन समझकर भले ही उनका उपहास कर ले और उनका सम्मान ना करके उनके भीतर स्थित किसी निराकार कुछ का सम्मान करे, किंतु यह सब मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। कृष्ण के द्विज रूप का दर्शन तो ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता तक करना चाहते हैं, है ना? तो इससे क्या संकेत कर रहे हैं प्रभुपाद कि जो कृष्ण का दर्शन नहीं करना चाहता है और कृष्ण के रूप को सामान्य मानता है। ए बच्चे, बच्चे को संभालिए। और कृष्ण के रूप का दर्शन नहीं करना चाहता है, कृष्ण के रूप को भौतिक मानता है, है ना? तो मूर्ख है, है ना? आगे प्रोपल लिखते हैं, भगवत गीता 9:11 में इसकी पुष्टि हुई है। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम्। जो लोग उनका उपहास करते हैं वे उन्हें दृश्य नहीं होते हैं। दृश्य मतलब हाँ, वो दर्शन नहीं कर सकते हैं कृष्ण का, जैसा कि ब्रह्म संहिता में तथा स्वयं कृष्ण द्वारा भगवत गीता में पुष्टि हुई है। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है, उनका शरीर कभी भी भौतिक शरीर जैसा नहीं होता। किंतु जो लोग भगवत गीता या इसी प्रकार के वैदिक शास्त्रों को पढ़कर कृष्ण का अध्ययन करते हैं उनके लिए कृष्ण समस्या बने रहते हैं। हाँ, प्रभुपाद क्या कहते हैं? जो भगवत गीता या इसी प्रकार के वैदिक शास्त्रों को पढ़कर कृष्ण का अध्ययन करते हैं उनके लिए कृष्ण समस्या बने रहते हैं। इसका मतलब
जो भक्तों से नहीं जानते।
हाँ, जो भक्तों का संग छोड़ करके जो नहीं समझता है कि मुझे भक्तों के संग की आवश्यकता है, खाली अध्ययन के द्वारा मैं जान लूंगा सब कुछ, और मुझे सेवा करने की, प्रणाम करने की, प्रश्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो उसके लिए कृष्ण समस्या बने रहते हैं। मतलब वो समझ नहीं सकता है कृष्ण को। जो भौतिक विधि का प्रयोग करता है उसके लिए कृष्ण एक महान ऐतिहासिक पुरुष तथा अत्यंत विद्वान चिंतक है। हाँ भाई, गीता का ज्ञान है तो कहते हैं भाई कृष्ण का जन्म चिंतन बहुत ऊंचा है, बहुत बड़े फिलोसफर हैं कृष्ण या महापुरुष हैं, बहुत अच्छा आचरण किया, चरित्र किया है, लेकिन वे जो है इतना समझते हैं। और क्या सोचते हैं कि कृष्ण सामान्य व्यक्ति हैं, और इतने शक्तिमान होते हुए उन्हें भौतिक शरीर धारण करना पड़ा, और क्या सोचते हैं कि कृष्ण को शरीर छोड़ना पड़ा, कृष्ण को मरना पड़ा, इस तरह की मूर्खता की विचार है। अंततोगत्वा भी परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, अतः भी सोचते हैं कि भगवान ने अपने निराकार रूप से ही साकार रूप धारण किया। परमेश्वर के विषय में ऐसा अनुमान नितांत भौतिकतावादी है। दूसरा अनुमान भी काल्पनिक है। जो लोग ज्ञान की खोज में हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं और उन्हें उनके विश्व रूप से कम महत्वपूर्ण मानते हैं। इस प्रकार कुछ लोग सोचते हैं कि अर्जुन के समक्ष कृष्ण का जो रूप प्रकट हुआ था वह उनके साकार रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार कृष्ण का साकार रूप काल्पनिक है। उनका विश्वास है कि परम सत्य व्यक्ति नहीं है, किंतु भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय में दिव्य विधि का वर्णन है और वह कृष्ण के विषय में प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रवण करने की है। चतुर्थ अध्याय में प्रभुपाद कहते हैं, जानते कौन सा श्लोक चतुर्थ अध्याय में, ऐसा कौन सा श्लोक है जिसमें कृष्ण कहते हैं प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रवण करने की विधि से कोई व्यक्ति कृष्ण को जान सकता है? कौन बताएगा श्लोक? और पीछे नहीं जानते श्लोक? तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया। यही वास्तविक वैदिक विधि है, और जो लोग सचमुच वैदिक परंपरा में हैं, वे किसी अधिकारी से ही कृष्ण के विषय में श्रवण करते हैं और बारंबार श्रवण करने से कृष्ण उनके प्रिय हो जाते हैं। जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं कि कृष्ण अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित हैं, उन्हें हर कोई नहीं देख सकता, वही उन्हें देख पाता है जिसके समक्ष वे प्रकट होते हैं। इसकी पुष्टि वेदों में हुई है, किंतु जो शरणागत हो चुका है वह परम सत्य को सचमुच समझ सकता है। निरंतर कृष्ण भावनामृत से तथा कृष्ण की भक्ति से आध्यात्मिक आंखें खुल जाती हैं और वह कृष्ण को प्रकट रूप में देख सकता है। ऐसा प्राकट्य देवताओं तक के लिए दुर्लभ है, अतः वे भी उन्हें नहीं समझ पाते और उनके दिव्य रूप के दर्शन की ताक में रहते हैं। निष्कर्ष यह निकला, यद्यपि कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन कर पाना अत्यंत दुर्लभ है और हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, किंतु उनके श्याम सुंदर रूप को समझ पाना तो और भी कठिन है। तो यहां प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो गर्ग संहिता में जो ना कृष्ण के रूप का बहुत सुंदर वर्णन और उनके रूप के महात्म्य का वर्णन है। तो गर्ग संहिता महात्म्य भी लिखा हुआ है कि कथा की समाप्ति पर कथा सुनी थी सांडिल्य मुनि के द्वारा राजा प्रतिबाहु ने। तो कथा की समाप्ति पर क्या हुआ, भगवान का जो है दर्शन प्राप्त हुआ, कृष्ण प्रकट हुए उस स्थान में जहां कथा हुई थी। तो जब कथा की समाप्ति हुई तो सांडिल्य मुनि की प्रेरणा से राजा ने ब्रजराज श्री मदन मोहन का ध्यान किया। कथावसाने राजेन्द्र सांडिल्य ने प्रणोदिता दध्यो भक्त्या ब्रजपतिम श्रीमन मदन मोहनम। अब उनके ध्यान करते ही अपनी प्रिया राधा तथा अपने पार्षदों के साथ श्री कृष्ण प्रकट हो गए। और कैसे हैं कृष्ण? बंसी लिए हैं और बेत्र लिए। उनका श्याम मुख करोड़ों कामदेवों को भी मोहिने में समर्थ था, ऐसा है कृष्ण का रूप। तथा प्रादुर्भूत कृष्ण प्रिया पार्षद बंसी बेत्र धरा श्याम कोटि मन्मथ मोहन। उन्हें देखते ही सांडिल्य मुनि ने और राजा प्रतिबाहु ने और सभी श्रोताओं ने उठकर भगवान को प्रणाम किया और विधिवत स्तुति की। दृष्ट्वागतम तम सांडिल्यो राज्ञा च सर्वश्रोतृभि प्रणामम तु चकाराशु स्तुतिम चक्रे विधानतः। तो देखा जब कृष्ण दर्शन देते हैं तो कितना आश्चर्य होता है, कितनी अद्भुत घटना है कि कृष्ण का दर्शन हुआ है। जैसे आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि देखिए बिल्कुल व्यवहारिक बातें हैं, शास्त्रों में लिखी हैं। सांडिल्य ने भगवान की स्तुति की कृष्ण को, कैसे कहते हैं, हे प्रभो वैकुंठ लीला परायण परम मनोहर, सभी देवताओं से नमस्कृत सर्वश्रेष्ठ है गोपाल लीला में संलग्न, और गोलोकनाथ आपको मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। किसने कहा? सांडिल्य मुनि ने कहा। वैकुंठ लीला प्रवरम मनोहरम नमस्कृतम देव गणे परम वरम, गोपाल लीलाभियुतम भजाम्यहम गोलोकनाथम शीर्षा नमाम्यहम। अब रज प्रतिबाहु ने क्या कहा, वे भी स्तुति करते हैं। हे गोलोकनाथ, हे गिरिराज पते, हे परेश, हे वृंदावनेश, हे नित्य विहार लीला करने वाले, हे राधापते, हे ब्रज बधूटियों द्वारा गीत कीर्ति, हे गोविंद, हे गोकुलपते, आपकी जय हो। गोलोकनाथ गिरिराज पते परेश वृंदावनेश कृत नित्य विहार लीला, राधापते ब्रजवधु जन गीत कीर्ते गोविंद गोकुलपते किलते जयोस्तु। अब रानी बोली, किसकी रानी, किसकी पत्नी है, हाँ राजा प्रतिबाहु की पत्नी बोली, हे वृंदावन के स्वामी, हे राधापते, हे पुरुषोत्तम, हे माधव, आप भक्तों के लिए सुखदायक हैं, मैं आपकी शरणागत हूं। वृंदावनेश राधेश पुरुषोत्तम माधव भक्तानां त्वं तु सुखदं त्वामहं शरणं गतम्। और कृष्ण के रूप का जो है ना कितना महात्म्य है, इसमें गर्गाचार्य प्रार्थना करते हैं, मैं भगवान श्री राधा कांत के उन युगल चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करता हूं, अपने हृदय में धारण करता हूं, क्या श्री राधा कांत के उन युगल चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करता हूं जो शरद ऋतु के प्रफुल्लित कमल की शोभा को अत्यंत नीचा दिखाने वाले हैं, मुनि रूपी भ्रमरों के द्वारा जिनका निरंतर सेवन होता रहता है। मुनि क्या है, भ्रमर है, कृष्ण के चरण कमल है, तो मुनि रूपी भ्रमरों के द्वारा जिनका निरंतर सेवन होता रहता है, जो वज्र और कमल आदि के चिन्हों से विभूषित हैं, क्या वज्र और कमल आदि चिन्हों से विभूषित क्या है, कृष्ण के चरण कमल, जिनमें सोने के नूपुर चमक रहे हैं कृष्ण के चरणों में, और जिन्होंने भक्तों के त्रिविध ताप का सदा ही नाश किया है। कृष्ण के चरण कमल ऐसे हैं जो हमेशा भक्तों के तीनों प्रकार के ताप नष्ट करते हैं, और जिनसे दिव्य ज्योति छिटक रही है। शरण्य कज पंकज श्री मती विद्वेषकम मिलिंद मुनि सेवितम कुल से कंज चिन्हामृतम ईश्वरत कनक नूपुरम दलित भक्त तापत्रयम सलंद्युति पद द्वयम हृदय धाम राधापते। और एक स्थान पर उनकी स्तुति है, कैसी है, जो पूर्ण है, पुराण पुरुष है, पुरुषोत्तम है एवं परात्पर पुरुष है, परमेश्वर है, उन साक्षात सदानंदमय कृपा निधि गुणों के भंडार भगवान श्री कृष्णचंद्र की मैं शरण लेता हूं। पूर्णः पुराणः पुरुषोत्तमोत्तमः परात्परो यः पुरुषः परेश्वरः स्वयं सदानंदमयं कृपाकरं गुणाकरं तं शरणं व्रजाम्यहम्। अब एक पूरा अध्याय मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि देवता भी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, मेरा दर्शन। तो देखिए कृष्ण का दर्शन कितनी कठिनाई से देवताओं को प्राप्त हुआ है, तो आप ध्यान से सुनिए। ये कथा नारद जी सुना रहे हैं राजा बहुलास्त्र को। नारद जी कहते हैं जो जीव पाकर भी, जीव पाकर भी, मनुष्य की जीवा पाकर भी कीर्तने भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन नहीं करता, वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। ये जीवा क्या है? मुक्ति की सीढ़ी है, है ना, मुक्ति में चलने के चढ़ने के लिए सीढ़ी के समान है, और सीढ़ी मिल गई नहीं चढ़ते तो दुर्बुद्धि। तो मनुष्य की जीवा मिली है और कृष्ण का कीर्तन नहीं करते हो, बहुत मूर्ख है। जीवा लब्ध्वापि यहां कृष्णम कीर्तनीयम न कीर्तये, लब्ध्वापि मोक्ष निश्रेणीयम नारोहति दुर्मति। अब हे राजन, इस बराह कल्प में धरा धाम पर जो भगवान श्री कृष्ण का पदार्पण हुआ है और यहां उनकी जो जो लीलाएं हुई हैं, वह सब मैं तुमसे कहता हूं, सुनो। अथ एतम प्रवक्ष्यामि श्री कृष्ण गमनम भुवि अस्मिन् वराह कल्पे वै यद्भूतम तच्छृणु प्रभु। बहुत पहले की बात है, दानव दैत्य आसुर स्वभाव के मनुष्य और दुष्ट राजाओं के भारी भार से अत्यंत पीड़ित हो पृथ्वी गौ का रूप धारण करके अनाथ की भांति रोती बिलखती हुई अपनी आंतरिक व्यथा निवेदन करने के लिए ब्रह्मा जी की शरण में गई। उस समय उसका शरीर कांप रहा था। पुरा दानव दैत्यानां नराणां खलु भूभुजां भोरे भारे समाक्रांता पृथ्वी गोरूप धारिणी अनाथ वन रुदंती वैं वेदयंती निज विथां कंपयंती निजं गात्रं ब्रह्माणं शरणं गतां। वह उसकी कष्ट कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने उसे धीरज बंधाया और तत्काल समस्त देवताओं और शिव जी को साथ लेकर वे भगवान नारायण के वैकुंठ धाम में गए। कौन? ब्रह्मा जी। किसको साथ लेकर? शिव जी को और पृथ्वी को और सब देवताओं को साथ लेकर गए। कभी ध्यान से देखिए, अभी कहां गए हैं? वैकुंठ धाम में गए भगवान नारायण के। ब्रह्मा था आश्वासताम सद्या सर्वदेव गणेन्वृता संकरेण समम प्रागा वैकुंठम मंदिरम हरे। वहां जाकर ब्रह्मा जी ने चतुर्भुज भगवान विष्णु को प्रणाम करके अपना सारा अभिप्राय निवेदन किया। अभी ध्यान से सुनिए, ब्रह्मा जी चतुर्भुज भगवान के पास गए हैं। तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु उन उद्विग्न देवताओं और ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले हैं। अब भगवान क्या बोलते हैं? नत्वा चतुर्भुजम विष्णु स्वाभिप्रायम जगादह अथोद्विग्नम देवगणम श्रीनाथ प्राह तम विधि। अब देखो ध्यान से सुनो, चतुर्भुज भगवान विष्णु कहां पर हैं? बात नहीं, बात नहीं। चतुर्भुज भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कहां पर? वैकुंठ में। बात नहीं। तो क्या कहा भगवान, क्या बोले? श्री भगवान ने कहा ब्रह्मन साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही। देखो चतुर्भुज विष्णु कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे ब्रह्मन साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही अगणित ब्रह्मांडों के स्वामी परमेश्वर अखंड स्वरूप तथा देवातीत हैं, उनकी लीलाएं अनंत एवं अनिर्वचनीय हैं, उनकी कृपा के बिना यह कार्य कदापि सिद्ध नहीं होगा। किनकी कृपा के बिना? कृष्ण की कृपा के बिना। अतः तुम उनके अविनाशी एवं परम उज्ज्वल धाम में शीघ्र जाओ। कृष्णम स्वयं विगणितान विपतिम परेशम साक्षात अखंड मति देव मति लीलम कार्यम कदापि न भविष्यति यम बिना ही गच्छासु तस्य विशदम पदम अम्बिजम तुम। अब ब्रह्मा जी क्या कहते हैं सुनिए ध्यान से। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? हे प्रभु, आपके अतिरिक्त कोई दूसरा भी परिपूर्णतम तत्व है ये मैं नहीं जानता। भगवान विष्णु कह रहे हैं कृष्ण के बारे में। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तो नहीं जानता, आपसे बढ़कर के कोई है? यदि कोई दूसरा आपसे उत्कृष्ट परमेश्वर है तो उसके लोक का मुझे दर्शन कराइए। त्वत्तः परम न जानामि परिपूर्णतमं स्वयं यदि अन्यस्तस्य साक्षात् लोकं दर्शयन्नहं प्रभु। श्री नारद जी कहते हैं ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर परिपूर्णतम भगवान विष्णु ने संपूर्ण देवताओं सहित ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड शिखर पर विराजमान गोलोक धाम का मार्ग दिखलाया। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को रास्ता दिखलाते हैं गोलोक धाम का कि रास्ता ये है जाने का। इत्युक्तोपि हरि पूर्णा सर्वे देव गणेश पद्मी दर्शयामास ब्रह्मांड शिखरो परी। वामन जी के पैर के बाएं अंगूठे से ब्रह्मांड के शिरोभाग का भेदन हो जाने पर जो छिद्र हुआ वह ब्रह्मद्रव से परिपूर्ण था। ब्रह्मद्रव यानी गंगा जल से भरा हुआ है। तो आप देखते हैं कि कृष्ण का दर्शन करने के लिए सब देवताओं को ब्रह्मांड के बाहर जाना पड़ेगा। ये जो ब्रह्मांड है तो चारों तरफ से बंद है और अब ये चर्चा चल रही है कि कैसे इस ब्रह्मांड से बाहर जाएं। वाम पादांगुष्ठ नख भिन्न ब्रह्मांड मस्तके श्री वामनस्य विवरे ब्रह्म द्रव समकुले। विशेष पानी का जहाज था उससे बाहर निकले। वहां ब्रह्मांड के ऊपर पहुंचकर उन सब ने नीचे की ओर उस ब्रह्मांड को तरबूज की भांति देखा। जब देवता लोग बाहर निकले ब्रह्मांड से तो क्या देखा ब्रह्मांड को पानी में तैर रहा है तरबूज की भांति। वो कौन सा पानी है वो जिसमें ब्रह्मांड तैर रहा है? कारण समुद्र है। जले आने न मार्गे बहिस्ते निर्यु सुरा कलिंग बिंब वच्छेदम ब्रह्मांडम दृश्यस्वधाम। इसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत से ब्रह्मांड उसी जल में तरबूज के समान इधर उधर लहरों में लुढ़क रहे थे। ये देखकर सब देवताओं को विस्मय हुआ। इंद्रायण फलानी वे लुढ़ंतम ज्ञानी वे जले लोक विस्मिता सर्वे वोचकिता वे। विचकित हो गए। वहां से करोड़ों योजन ऊपर 8 नगर मिले जिनके चारों ओर दिव्य चहार दीवारी शोभा बढ़ा रही थी और झुंड के झुंड रत्न के वृक्षों से उन पुरियों की मनोरमता बढ़ गई थी। रत्न के वृक्ष कोटिसोम योजन और धम्मे पुराणा मस्तकम गता दिव्य प्राकार रत्नांत्री रत्नादी द्रम वृंद मनोहरम। वही ऊपर देवताओं ने विरजा नदी का सुंदर तट देखा जिससे विरजा की तरंगें टकरा रही थी। वह तट प्रदेश उज्ज्वल रेशमी वस्त्र के समान शुभ्र दिखाई दे रहा था। दिव्य मणि के सोपानों से अत्यंत उद्भासित हो रहा था। तदूर्धम दद्रसो देवा विरजाया सतम शुभम तरंगितम सौम शुभ्रम सोपानेर भास्करम परम। तट की शोभा देखते और आगे बढ़ते हुए वे देवता उस उत्तम नगर में पहुंचे जो अनंत कोटि सूर्यों की ज्योति का महान पुंज जान पड़ता था। तम दृष्ट्वा प्रचलन्तस्ते तत्पुरम जगमूरुत्तमम असंग कोटि मार्तंडम ज्योतिषां मंडलम महं। उसे देखकर देवताओं की आंखें चौंधी आ गईं। वे उस तेज से पराभूत हो जहां के तहां खड़े रह गए। आगे बढ़ नहीं सकते हैं और देख भी नहीं पाते कुछ भी। तब भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार उस तेज को प्रणाम करके ब्रह्मा जी उसका ध्यान करने लगे। दृष्ट्वा प्रताड़िताक्षास्ते तेजसा दर्शिता सीता नमस्कृत्वाथ तत्तेजो दध्योम विष्णुआज्ञया विधि। उसी तेज के भीतर उन्होंने एक परम शांतिमय साकार धाम देखा। उसमें परम अद्भुत कमल नाल के समान धवल वर्ण और हजार मुख वाले शेष नाग का दर्शन करके सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। जब स्तुति प्रार्थना की तो उन्होंने दिखाई दिया कि उस तेज के अंदर क्या है। शेष नाग देखें तज्ज्योतिर्मंडले पश्यन् साकारं धाम शान्तिमन् तस्मिन् महाद्भुतं दीर्घं मृणालय धवलं परं शास्त्रवदनं शेषं दृष्ट्वा नेमो सुरास्ततः। और उस शेष ना की गोद में लोकवंदित गोलोक धाम का दर्शन हुआ। समझ रहे हैं? जहां देवताओं के ईश्वर प्रधान काल का भी कोई बस नहीं चलता है। तस्योत्तंगे महालोको गोलोको लोके वंदितः यत्र कालः कलयताम ईश्वरो धाम मानिनाम। वहां माया भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकती, मन चित्त बुद्धि अहंकार 16 विकार महातत्व भी प्रवेश नहीं कर सकते। फिर तीनों गुणों के विषय में तो कहना ही क्या है। राजन्न प्रभवेन माया मनश्चित्तं मतिर्यहम् न विकारो विशत्येवम् न महां च गुणा कुतः। वहां जो है एक स्त्री को देखा द्वार पे, कामदेव के समान मनोहर लू रूप लावण्य शालिनी श्याम सुंदर विग्रह श्री कृष्ण पार्षद।